मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 22 अक्टूबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि कल से यहां हम लोगों की 15 दिन की क्लासेज शुरू हो चुकी हैं और अभी जो आप सब में से कुछ लोग यहां आए हैं उनके बीच रहकर बातचीत करके और जीवन के सबसे खूबसूरत अवसरों को पाकर, सच पूछिए तो मैं बहुत ज्यादा अपने अंदर खुशी का एहसास कर रहा हूं। मुझे लगता है जैसे कि मेरी भी उम्र अचानक काफी वर्ष घट गई है और जिसमें मैं कम से कम ये तो कही सकता हूं कि 35-40 सालों की कमी आ गई है और मैं भी कहीं न कहीं अपने आप को आप लोगों के बीच की ही एक संख्या महसूस करने लगता हूं। तो आप सब मुझे यह अवसर प्रदान करते हैं, इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। नो डाउट कि कल क्लास में तो मैं उन सबके प्रति आभार व्यक्त कर ही चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप में से ही क्लास में आते हैं तो मुझे आप लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहिए। और आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इससे पहले क्लास में आ चुके हैं, तो उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना मैं अपना धर्म समझता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली बार मैंने किया था कि जब मेरी क्लासेज शुरू हो जाती हैं तब मैं किसी एक पर्टिकुलर पेपर को लेता हूं जनरल स्टडीज के और खासकर मेंस एग्जामिनेशन को आधार बना करके, और फिर उस पर कुछ टॉपिक्स का चयन करके हम लोग बातें करते हैं। आप में से अगर कुछ लोग पिछले समय से सुनते आ रहे हों तो ध्यान होगा कि पिछली बार जब क्लासेस हम लोगों की चल रही थी उस समय के लिए मैंने इंटरनेशनल रिलेशन को चुना था और इंटरनेशनल रिलेशन पर कुछ टॉपिक का चयन करके उस पर बातें की थी। ये पहला प्रयोग किया गया था और उसे आप लोगों ने बहुत अधिक सराहा था, बहुत अधिक उसकी तारीफ की थी, बल्कि बहुत से मेल तो इस बात के लिए भी आए थे कि सर बीच बीच में ज्यादा अच्छा होगा कि आप कुछ टॉपिक से चुन ले किसी एक पर्टिकुलर पेपर से और उसी के बारे में बातें करें तो उससे हमें उस पेपर की तैयारी करने में बहुत मदद मिल जाती है। हालांकि मैं इस बात के लिए क्षमा चाहूंगा कि मैं आप लोगों की उस इच्छा के अनुकूल अपने काम को अंजाम नहीं दे सका, लेकिन फिर भी मुझे भी यह बहुत अच्छा लगा कि कम से कम उस समय जबकि यहां क्लासेज चल रही हो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को, यानी पर्टिकुलर पेपर को कहना चाहिए, उस पेपर के सेलेक्टेड टॉपिक्स को जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या यूं कह लीजिए कि जिन्हें थोड़ा सा समझने की ज्यादा जरूरत होती है, बेहतर है कि उन्हीं पर कुछ बातें की जाएं। तो दोस्तों, आप लोगों के उसी फीडबैक को ध्यान में रखते हुए इस बार के लिए मैंने जिस पेपर का चयन किया है वह है आपके जनरल स्टडीज का फोर्थ पेपर, जिसे आप नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का पेपर कहते हैं। और इसका चयन मैंने खासकर इसलिए भी किया है क्योंकि बीच बीच में मैं देखता था कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मेल लिखते थे कि सर इस पर हमें थोड़ा सा बताइए, और चूंकि करंट अफेयर से इसका ज्यादा संबंध नहीं होता है, बीच बीच में इशारे के तौर पर ही मैं बताता था कि आप इसका उपयोग करंट अफेयर्स में कर सकते हैं, तो इसलिए भी मैं यूं मानकर चलता हूं कि ये पेपर एक तरीके से लगभग छूट सा ही जाता है, क्योंकि जो डेली ऑडियो लेक्चर है आप जानते हैं कि उसका जो स्वरूप है वो करंट अफेयर्स पर बेस्ड होता है। इसलिए भी एक अच्छा अवसर है जबकि हम इस छूटे हुए पेपर के साथ भी कुछ न्याय कर सकें, और इनफैक्ट सच बात यह है कि इस पेपर के साथ न्याय करने की प्रक्रिया में मैं एक प्रकार से अपने साथ ही न्याय कर रहा हूंगा। तो दोस्तों, अब आने वाले दिनों में, और आने वाले दिनों का मतलब है 5 नवंबर तक, हम लोग अब इसी फोर्थ पेपर के डिफरेंट इश्यूज के बारे में बातें करेंगे, राइट। दूसरी बात कि चूंकि फ्रेंड्स अब जो मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं ये पहले से ही रिकॉर्डेड कर दी गई है, इसीलिए जो स्टूडेंट इस बीच में मार्च 2019 के क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनके नाम नहीं लिए जा सकेंगे, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन जो स्टूडेंट बकायदे अपने रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हें व्यक्तिगत तौर पर इस बात की सूचना दे दी जाएगी कि उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। हाँ, जितने भी नाम एकत्रित होंगे आखिरी में, यानी कि 6 नवंबर को जब बिल्कुल करेंट चीजों पर बात होने शुरू हो जाएगी, उस समय उन सभी के नाम लिए जाएंगे और उन्हें बताया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मित्रों, यह दूसरी बात। जो तीसरी बात है कि आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि अब आपके फीडबैक का कोई महत्व नहीं रह गया है। आपके फीडबैक का उतना ही महत्व रहेगा जितना अभी था। यानी कि आप बकायदे ईमेल के जरिए मुझे अपने विचारों से अवगत कराते रहें। हो सकता है कि मैं आपके ईमेल के जवाब में अपनी आवाज में तुरंत कोई उत्तर न दे सकूं, लेकिन रिटेन फॉर्मेट में आपको अपने ईमेल के उत्तर मिलेंगे और साथ ही साथ जो ईमेल मुझे ऐसे लगेंगे कि उनके बारे में मुझे बोलकर बताना चाहिए, तो डेफिनेटली बाद में जब करंट अफेयर्स पर बातें होने लगेंगी उस समय आपके उन प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल भी न समझें कि अब ईमेल लिखना व्यर्थ है। आप मान करके चलें कि आपके द्वारा लिखे गए ईमेल की उतनी ही अभी भी अहमियत है जितने पहले थी। और मैं डेली क्लास खत्म होने के बाद जब घर पे आता हूं तो सबसे पहला मेरा काम होता है कि आप लोगों के ईमेल मैं पढ़ूं, राइट। और इससे मुझे फोर्थ पेपर के बारे में भी निर्णय लेने में मदद मिलेगी और जहां जरूरी होता है तो फिर मैं हो सकता है कि अपने लेक्चर्स में भी तब्दीलियां कर दूं, आई डोंट नो। तो ईमेल जो आप लिखेंगे वो मेरे लिए बहुत अधिक महत्व रखेंगे। तो दोस्तों, इन तीन निर्देशों के बाद, अनुरोध के बाद, आइए अब मैं सीधे सीधे इस प्रश्न पर आता हूं कि ये जो जनरल स्टडीज का आपका फोर्थ पेपर होता है किस तरीके का है, इसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी आइए जानकारी हासिल कर लेते हैं। क्योंकि देखिए वही इनफैक्ट सबसे अच्छा रोड मैप होता है। एट्रेंडम तरीके से जब हम किसी भी पेपर के बारे में बातचीत करने लगते हैं तो इनफैक्ट सही मायने में हम सही तरीके से तैयारी नहीं कर रहे होते हैं। और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जहां पर कि जो एक समान नंबर पाने वाले स्टूडेंट की संख्या 4-4, 5-5 तक होती है, मतलब सेम मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट पता लगा कि 4-5 है, जहां इतना सूक्ष्म कंपटीशन हो, तो बट नेचुरल है कि वहां बहुत जरूरी होता है कि हम एक रणनीति के तहत अपनी तैयारी करें। अब ये बात अलग है कि हमें सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन मिल सके इसको इंश्योर करने के लिए जरूरी है कि हम एक साइंटिफिक अप्रोच लेकर के चलें। तैयारी करने से पहले सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझें, ये देखें कि इस तैयारी को कैसे अंजाम दिया जा सकता है, इसके लिए हमें कहां कहां से सामग्री मिलेगी वो सब हम जुटाएं। और जुटाने के बाद जो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है वो ये कि अब जो सामग्री हमने जुटा ली है उनका हम उपयोग किस तरीके से करें। देखिए, सामान्य तैयार स्टूडेंट में ये भावना होती है, विचार होते हैं कि साहब अब तो चीजें मिल गई हैं और बस इसको रट डालो। मित्रों, आपने महसूस किया होगा कि रटने का तो मैं घोर विरोधी रहा हूं। इसलिए नहीं कि उससे मेरी कोई दुश्मनी है, व्यक्तिगत तौर पर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन घोर विरोधी होने का मतलब यह है कि उससे कोई फायदा नहीं होता। हाँ, यूनिवर्सिटी वगैरह कॉलेज वगैरह में फायदा हो सकता है, होता भी रहा है और अभी भी हो रहा है, वहां की बात अलग है। लेकिन मैं तो कॉलेज की तैयारी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं या फिर मैं कहीं ना कहीं लाइफ की बात करता हूं। तो रटी हुई चीजें न तो लाइफ में काम आती हैं न समझी हुई चीजें काम आती हैं। और ठीक इसी तरह से रटी हुई चीजें कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी काम नहीं आती और खासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में तो बिल्कुल भी काम नहीं आती। और जहां तक इस फोर्थ पेपर का सवाल है वहां तो वह बिल्कुल भी काम नहीं आती। इसलिए इससे पहले कि मैं किसी टॉपिक को लेकर बात करना शुरू करूं, बहुत अच्छा होगा कि हम सब थोड़े से रोड मैप को जान लें, यानी कि उस रास्ते को समझ लें जिस रास्ते पर हमें चलना चाहिए, राइट दोस्तों, और इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे क्योंकि ये सबसे अहम बिंदु होता है तैयारी करने का, तो हो सकता है कि इस लेक्चर में वो बात पूरी ना हो पाए, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में हम इसे आगे बढ़ाएंगे लेकिन समझेंगे इसे अच्छी तरीके से ही। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात जो इस फोर्थ पेपर के बारे में है, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये बहुत स्कोरिंग पेपर है। मतलब 2013 में जब इस नए पैटर्न की शुरुआत हुई, मेंस के नए पैटर्न की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि प्रीलिम्स का पैटर्न जो बदला है वो उससे दो साल पहले बदल चुका था, मेंस दो साल बाद बदला, 2013 से बदला हुआ। जब आप 2013 का के पेपर्स उठा करके देखेंगे, अनसॉल्व पेपर, और फिर स्टूडेंट के स्कोर उठा करके देखेंगे, तो उसमें साफ आपको एक चीज दिखाई देगी कि दूसरे जनरल स्टडीज के जो शेष तीन पेपर हैं उनमें स्कोर बहुत पुअर है। मतलब आप कल्पना करके देखिए कि अगर इन तीन पेपर का स्कोर जोड़ दिया जाए तो जो टॉपर रहे हैं उनका स्कोर तक सोच करके देखिए कि 35% के आसपास है, 35% स्कोर टॉपर के। लेकिन चौथे पेपर में अगर आप लोगों के नंबर देखेंगे तो सभी के नंबर 100 एबव है, ऑलमोस्ट सभी के, यानी कि शुरू के जो कुछ स्टूडेंट है 100 एबव, और अगर रिमेनिंग थ्री पेपर्स के देखेंगे तो सब बिलो 100 है, 70-80 इस तरह के नंबर हैं। खैर वो तो देखिए, उससे इंटेलेक्चुअलिटी का कोई संबंध नहीं, उसका संबंध इस बात से होता है कि पेपर कैसा पूछा गया है। मैं कई बार आप लोगों को बताता हूं कि सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं होता, सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट सच पूछे तो हमारी तैयारी भी उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी ये होती है कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं। हमारी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन क्वेश्चन अगर बहुत जटिल किस्म के पूछ लिए गए हैं तो स्कोर कम हो जाएगा। हमारी तैयारी सामान्य किस्म की ही है और प्रश्न भी सामान्य किस्म के पूछ लिए गए हैं तो हमारा स्कोर बहुत बेहतर हो जाएगा। इसलिए आप अपने दिमाग में ये बात मत बिल्कुल लेकर के आइएगा कि 2013 के जो स्टूडेंट थे उनकी तैयारी खराब थी या वो कम इंटेलिजेंट थे, हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं क्योंकि हम तो 55% ला रहे हैं और फर्स्ट 10 में स्थान पा रहे हैं और वो तो साहब कहां 40% में टॉप कर गए थे, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। है ना, वो सोचना एक तरीके से अतार्किक होगा। लेकिन जो यहां मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, बताने का सोच रहा हूं, जो मेरा उद्देश्य है वो यह स्पष्ट करना है कि इसके बावजूद जो फोर्थ पेपर था उसमें उनके स्कोर बहुत अच्छे थे। इससे सिद्ध होता है कि ये जो फोर्थ पेपर है वो बहुत स्कोरिंग है। लेकिन यहां पर एक उल्टी बात भी है। उल्टी बात यह है कि जो 2017 का जो एग्जाम हुआ जिसके रिजल्ट इसी साल 2018 में डिक्लेयर हुए हैं, राइट, उसमें जब हम फोर्थ पेपर का स्कोर देखते हैं तो रिमेनिंग थ्री पेपर्स से कम है। जो रिमेनिंग थ्री पेपर्स यानी कि जनरल स्टडीज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, उसमें तो उनके स्कोर अच्छे हैं, ठीक ठाक है, 110-120 नंबर के स्कोर हैं। लेकिन पता लगा कि जब फोर्थ पेपर में देखते हैं तो वो 100 के आसपास है, कुछ के 100 से भी कम है। अब इससे हम क्या निष्कर्ष निकालें? मैं ये बात इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूं फ्रेंड्स क्योंकि आप लोगों ने महसूस किया होगा कि मैं लगातार आप लोगों से अनुरोध करता रहता हूं कि आप सब जो ये अनसॉल्व्ड पेपर है इसकी मदद बराबर लेते रहें क्योंकि ये बहुत अच्छा मार्गदर्शक है हम सबका जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। तो जब आप इस चीज को देखेंगे तो हो सकता है कि जिस मार्ग के आप दर्शन करें उसमें भटकाव नजर आ जाए और आप कुछ उल्टे ही निष्कर्ष निकाल लें। आपको ऐसा निष्कर्ष बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। किसी कारण से हो जाता है ऐसा कि नंबर कम आते हैं और उसका कारण मुझे मालूम है कि आप अगर केस स्टडी वाला पोर्शन उठा करके देखेंगे सन 2017 में जो केस स्टडीज पूछे गए हैं तो वो लेंदी बहुत है। मतलब एक केस दे दिया गया है, एक मामला दे दिया गया है और इसके बाद उस मामले से ही कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो इतना लेंदी बन गया है कि इत्मीनान से स्टूडेंट उसे सॉल्व नहीं कर पाया। और कई स्टूडेंट से मेरी व्यक्तिगत तौर पर बात हुई जिनका सिलेक्शन भी हुआ और बहुत अच्छी रैंकिंग भी आई, उनका यही कहना था कि कुछ छूट गया। अब देखिए, जब कुछ छूट ही जाएगा तो आसमान से तो नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। एग्जामिनर ये मान करके तो नंबर नहीं दे देगा कि साहब पेपर लेंदी था, कुछ छूट गया, तो कोई बात नहीं, जो छूट गया है उसके भी नंबर दे दिए जाए। वो मेन कारण रहा। अदरवाइज अगर पेपर का आकार प्रकार ठीक ठाक होता तो उसमें भी बहुत अच्छे नंबर मिले होते। कुल मिलाकर जो मैं कहना चाह रहा हूं मित्रों, और इसी के साथ ही मैं आज के अपने इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त भी करूंगा कि जो फोर्थ पेपर होता है ये बहुत स्कोरिंग पेपर होता है, इसे आप दिमाग में रखिएगा। लेकिन स्कोरिंग होने का ये मतलब मत लगा लीजिएगा कि ये बहुत सरल होता है, आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक नहीं होगी तब भी आप स्कोर कर लेंगे। इस रहस्य का खुलासा मैं अब कल के डेली ऑडियो लेक्चर में करूंगा। तो मित्रों, अब अपने इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो सब आप अपने हिसाब से देख लेंगे। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।